आज हॉलीडे है मगर फिर भी बबलू सुबह से बोर हो रहा है। बाहर खेलने नहीं जा सका इसीलिए। जोरों से बारिश जो हो रही है सुबह से। अब तो असर की नमाज का वक्त हो गया।
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
अम्मी यहाँ किचन में काम कर रही हैं और अब्बू अभी मस्जिद जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। अब्बू अम्मी से कहते हैं,
सुनिए मैं मस्जिद जा रहा हूँ। असर के बाद मस्जिद में एक लेक्चर भी है, वो अटेंड करके मगरिब पढ़ कर आऊँगा।
अब्बू इतनी बारिश हो रही है, आप कैसे जाएंगे?
अरे तो क्या हुआ बबलू, मैं कार में चला जाता हूँ। आपको मालूम है मस्जिद जाकर नमाज पढ़ने का अजर 27 टाइम्स ज्यादा है। और हाँ बेटे, आप जब 7 साल के हो जाओगे तो आप भी मेरे साथ रोजाना मस्जिद जाया करोगे। नमाज 7 साल के बाद फर्ज है। अभी तो आप नमाज सीख रहे हैं ना?
हाँ अबू सीख रहा हूँ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका बताया है उस तरीके से।
हाँ बेटे, हमें हमारी सारी जिंदगी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से गुजारनी चाहिए। डोर लॉक कर लीजिए, मैं जा रहा हूँ। अल्लाह हाफिज।
फी अमान अल्लाह, आप जाइए मैं लॉक कर लूँगी।
ये कहकर अम्मी भूल गई डोर लॉक करना। फिर अम्मी ने वजू किया और बबलू को भी वजू करवाया। अम्मी ने नमाज पढ़कर बबलू को भी नमाज पढ़ाई। इतने में बारिश रुक गई और बबलू अम्मी से बाहर जाने की परमिशन लेने लगा।
अम्मी अम्मी मैं बाहर दोस्त के घर जाऊं?
नहीं बेटे, बारिश अभी रुकी है, आप कहीं गिर जाएंगे।
प्लीज अम्मी प्लीज जाने दीजिए ना, मैं नहीं गिरूंगा।
नहीं बेटे, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, अम्मी की बात सुनते हैं। अच्छा बेटे, मैं किचन में काम करने जा रही हूँ, आप ये कलरिंग करिए बुक में।
ये कहकर अम्मी किचन में मसरूफ हो गई। मगर बबलू को तो बाहर जाने की पड़ी थी, ड्राइंग में बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था। फिर बबलू की नज़र डोर पर पड़ी जो अम्मी ने लॉक नहीं किया था। बबलू को ख्याल आया कि
अम्मी तो हमेशा रुकते रहते हैं, ये मत करो वो मत करो, देखो तो बारिश रुक भी गई है तो भी बाहर जाने से मना कर रहे हैं। मैं चुपके से चला जाता हूँ, थोड़ी देर बाद आ जाऊंगा, अम्मी को पता भी नहीं चलेगा।
ये सोचकर बबलू चुपके से बाहर चला गया और अम्मी यहाँ किचन में मसाला पीस रही थी। बबलू रोड से संभाल संभाल कर चल रहा था कि कहीं फिसल न जाए। बचते बचाते अयाज के घर पहुँचा और सोचा कि
अम्मी तो मना कर रहे थे, मैं गिर जाऊंगा सोचकर, अम्मी को क्या मालूम अब मैं बड़ा हो गया हूँ।
अब जैसे ही आगे बढ़ा बबलू का पैर फिसला और वो धड़ाम से गिर पड़ा।
मैं गिर गया।
इतने में अयाज और रुजता बाहर आए तो देखा कि बबलू को जोर से मार लगा है। उन्होंने बबलू को अंदर बुलाया, जख्म को क्लीन करके बैंडेज लगा दिया और बबलू को पानी दिया।
अल्हम्दुलिल्लाह। रुजता दीदी आंटी है क्या घर पर?
नहीं बबलू, अम्मी और अब्बा छोटी को लेकर गए हैं डॉक्टर के पास।
बबलू अभी अभी तो बारिश रुकी है और इतनी सर्दी में आप क्यों आए?
आंटी ने रोका होगा ना?
रोका तो था दीदी, मैं चुपके से डोर खुला देकर आ गया।
नहीं बबलू, माँ बाप की बात माननी चाहिए, वो हमारी भलाई के लिए ही रोकते ठोकते हैं, हम छोटे हैं इसीलिए समझ नहीं पाते। अब देखो तो कैसी चोट लगी है आपको, और देखो राइट हैंड के फिंगर्स को मार लगा है, कुछ दिनों तक स्कूल में लिख भी नहीं पाओगे।
ये सुनकर बबलू बहुत अफसोस करने लगा, काश अम्मी की बात मान ली होती। बबलू क्लास का क्लेवर स्टूडेंट था, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि वो अब कुछ दिन तक नहीं लिख पाएगा।
अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद माँ बाप ही हैं। माँ बाप की बात न मानने पर अल्लाह नाराज, माँ बाप नाराज और हमारा ही नुकसान।
अयाज ये सब गौर से सुन रहा था। रुजता दीदी उसे कई बार कुरान की बातें और हदीस सुनाती रहती जो वो पढ़ती। अयाज ने माँ बाप के बारे में हदीस जाननी चाही और रुजता से पूछा,
रुजता दीदी आपको कोई स्टोरी मालूम हो तो बताइए ना माँ बाप के बारे में।
हाँ मैंने कल ही पढ़ा था, बताती हूँ। ये स्टोरी है शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की। शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की माँ ने सिखाया था, बेटा तुम हमेशा सच बोलना, चाहे तुम्हारा नुकसान हो या तुम्हारी जान जाए। एक वक्त जब वो सफर पे जा रहे थे, उनकी माँ ने कुछ अशर्फियाँ उनके ड्रेस में सी दी थी ताकि वो गुम ना हो, ताकि कोई चोरी ना करे। जब वो सफर में निकलते हैं तो उन्हें डाकू का ग्रुप मिलता है। डाकू उनकी पूरी जांच करते हैं और उनको कुछ नहीं मिलता, तो वो उस बच्चे से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास कुछ नहीं है। ये सुनकर वो कहते हैं कि मेरे पास अशर्फियाँ हैं जो मेरी ड्रेस में मेरी माँ ने सी दी हैं। इस पर डाकू कहते हैं कि अगर तुम ना बताते तो हमें कभी मालूम ना होता कि तुम्हारे पास अशर्फियाँ हैं। डाकू कहते हैं कि तुम हमसे झूठ भी बोल सकते थे, तुमने सच क्यों कहा। इस पर अब्दुल कादर जिलानी कहते हैं कि मेरी माँ ने झूठ बोलने से मना किया था। इस छोटे बच्चे की बात पर डाकू बहुत शर्मिंदा होते हैं, उस बच्चे को छोड़ देते हैं और उनकी अशर्फियाँ भी, और वो डाकू भी चोरी करना हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। देखा किस तरह माँ की बात सुनने पर अब्दुल कादर जिलानी डाकू से भी बच गए, उनकी अशर्फियाँ भी चोरी नहीं हुई और डाकू ने चोरी भी छोड़ दी।
माशाल्लाह दीदी अच्छी स्टोरी सुनाई, मैं भी इंशाल्लाह हमेशा सच बोलूँगा और अपने अम्मी अब्बू की बात हमेशा सुनूंगा।
हाँ एक और किस्सा सुनाती हूँ मूसा अलैहिस्सलाम का। मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बार अल्लाह से पूछा कि अल्लाह मेरा जन्नत में पड़ोसी कौन है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि एक कसाई। मूसा अलैहिस्सलाम हैरत से सोचे कि न कोई मुजाहिद, न कोई वली, न कोई बड़ा नेक आदमी, बल्कि एक कसाई। मूसा अलैहिस्सलाम उसे देखने गए। वो आम कसाईयों की तरह थैले में गोश्त डाले शाम को अपने घर की तरफ जा रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि क्या तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। उसने कहा हाँ आ सकते हैं। उसने नहीं पहचाना कि ये मूसा अलैहिस्सलाम है। फिर वो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ अपने घर गया, रोटी बनाई, सालन तैयार किया, उसे प्लेट में रखा। घर में एक औरत बेड पर लेटी पड़ी थी, बहुत कमजोर। कसाई उसे उठाकर निवाले बना बना कर खिलाता रहा, यहाँ तक कि उसने सर हिलाकर बस करने को कहा। फिर उसने उसे बुढ़िया का मुंह साफ किया, पानी दिया। ये सब करने पर वो बुढ़िया कुछ बड़बड़ाने लगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ये कौन है। उसने कहा कि ये मेरी अम्मी हैं। मैं रोज सुबह इनके सारे काम करके जाता हूँ और शाम को आकर पहले इनकी खिदमत करता हूँ, फिर अपने काम करता हूँ। मेरे जिम्मे मेरी माँ की खिदमत है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये कुछ कह रही थी। कसाई ने कहा ये मेरी अम्मी बुढ़ापे में कुछ भी बोलती रहती हैं। इनकी जब भी खिदमत करता हूँ ये मुझे दुआ देना शुरू हो जाती हैं कि अल्लाह मुझे जन्नत में मूसा अलैहिस्सलाम का पड़ोसी बना दे, भला मैं किधर और मूसा अलैहिस्सलाम किधर। समझे आप लोग, ये है माँ जिसकी दुआ ने एक कसाई को जन्नत में मूसा अलैहिस्सलाम का पड़ोसी बना दिया।
रिश्ता दीदी मुझे भी जन्नत में जाना है माँ बाप की खिदमत करके। कुरान मजीद में कई जगह पर आया है वो बिलवालिदैन इहसाना, यानी माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वालिदैन की नाफरमानी कबीरा गुनाह है।
ये सब सुनकर बबलू पर बहुत असर हुआ। बड़ी उदासी से रुजदा से बोला,
दीदी अब अल्लाह भी मुझसे नाराज है और अम्मी भी, मैं क्या करूं?
बबलू अम्मी से माफी मांग लो और आगे से उनकी बात हमेशा मानना। वो तुम्हें जरूर माफ कर देंगी, फिर अल्लाह भी तुमसे राजी हो जाएंगे।
फिर अचानक रुश्दा को याद आया कि बबलू के अम्मी उसे ढूंढ रहे होंगे। उसने बबलू से कहा,
बबलू आंटी आपको ढूंढ रहे होंगे, मैं कॉल करके बताती हूँ कि आप यहाँ हो।
इतने में ही बेल हुई। रुश्दा ने देखा तो वो बबलू की अम्मी थी। वो बबलू को ढूंढती हुई यहाँ आई। रुश्दा ने सलाम किया और उन्हें अंदर बुलाया। अम्मी बबलू को देखकर कहने लगी,
बेटा मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा, और ये मार कैसा लगा?
अम्मी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी बात नहीं मानी और बिना बताए यहाँ चला आया। रास्ते में फिसल कर गिर गया और ये मार लगा। अब से मैं आपकी बात हमेशा मानूंगा, आप मुझसे नाराज तो नहीं हो ना?
मैंने तुम्हें माफ किया बबलू, और मैं नाराज भी नहीं हूँ।
तो दीदी अब अल्लाह भी मुझसे नाराज नहीं है ना?
नहीं बबलू, अल्लाह भी नाराज नहीं होंगे, अम्मी ने जो माफ कर दिया। आंटी मैं आपको बताना भूल गई कि बबलू यहाँ आए हैं। मैं इन्हें स्टोरी सुनाने में आपको कॉल करना भूल गई।
कोई बात नहीं बेटे, आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं बबलू को, जज़ाकअल्लाह।
बबलू बहुत खुश था कि अम्मी ने उसे इतनी जल्दी माफ कर दिया। उसने दिल में इरादा किया कि वो हमेशा वालदेन की बात मानेगा और अल्लाह ताला को हमेशा राजी रखेगा।
अभी मैं आपको एक पोयम सुनाता हूँ जिससे आप बहुत खुश हो जाएंगी।
ओह जरूर बेटा।
1 2 स्टार्ट।
प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, लोई का गाके मुझको सुलाती है तू, मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तू, मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे ममता के साए में पूरो बनो, थाम कर तेरी उंगली में बढ़ता चलूं, आसरा तेरी।